भागवतम के देखो आरहवान स्वाध्याय अध्याय का नाम है बलि महाराज से बामन देव द्वारा दान की याचना और 13 श्लोक हम पढ़ेंगे 22, 23 और 24। 22 और 23 में तात्पर्य नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं पहले 22 और 23 श्लोक को पढ़ता हूँ, इसके बाद 24 श्लोक की आवृत्ति हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभि कर्मय असंकुशो द्वीपे नाम पूर्यत सूर्यते नौ वर्ष समेतेन सप्त द्वीप वरीक्षया। यदि मैं 3 पद भूमि से संतुष्ट न हूँ तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों से भी द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। सप्त द्वीपाधिपतयो कृपा वर्ण ददा गया वयः अर्थय कामय गता नामकम कृष्णाया इतनस्तुतम। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज प्रथो तथा महाराज वय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। हमारे साथ भाई कैसे यदिक्षयोपपन्ने संतुष्टो वर्तते सुखम् संतुष्टस्त्रोकोकोपसादित यदीक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम् न संतुष्टस्त्रोकैर्लोके अजि आत्मोपसादित यदृक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम् न संतुष्टस्त्रिभिर्लोकैरजितात्मोपसादित।
Oh,
इच्छया अपने कर्म के अनुसार परम सत्य द्वारा जो कुछ प्रदत्त है उत्पन्नेना जो कुछ मिला है उससे संतुष्ट मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। वर्तते है सुखम सुख न नहीं असंतुष्ट असंतुष्ट के लिए विभिन्न लोक ही तीनों लोकों को पा लेने पर अजित आत्मा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता उपसादित ही भले ही प्राप्त क्यों न कर ले। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का वर्ग श्रील प्रभुपाद की मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि असंतोष असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। तात्पर्य यदि सुखी जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया है सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगी नदीहीनाम सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुःखम अयत्नतः। हे दैत्य मित्रों देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार की हमें दुख प्राप्त होता है। भागवतम 7:6 सुख प्राप्ति के संबंध में यह विचारधारा बिल्कुल सही है। भगवद्गीता 6:21 में असली सुख का वर्णन इस प्रकार हुआ है सुखम आत्यंतिकम यत्र बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम सुखस् क्षणति तत्त्वतः। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर फिर वह सत्य से कभी दूर नहीं जाता। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। परा इंद्रियां भौतिक तत्व से बनी इंद्रियां नहीं होती। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है अहम ब्रह्मास्मि और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देही है। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित हैं और अज्ञान के कारण आच्छादित करने वाली इन इंद्रियों को हम अपनी वास्तविक इंद्रियां मान लेते हैं किंतु अपनी वास्तविक इंद्रियां तो भौतिक आवरण के भीतर हैं। देहनो इसमें यथा देह भौतिक तत्व के आवरण के भीतर आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वे न निर्मलम् आध्यात्मिक इंद्रियों के आच्छादित होते ही हम इन इंद्रियों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की पुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं तब इन इंद्रियों की पूर्ण संतुष्टि होती है। इंद्रिय तृप्ति के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिलेगा मिल सकेगा। इंद्रिय तुष्टि की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा ले और अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए उसी फल भी प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसे से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे भ्रम बस सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी हैं, जबकि तथ्य यह है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के वास्तविक कार्य में लगे रहते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले और वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, तो उसे कभी भी नित्य आनंदमय सुख नहीं मिल सकेगा। अतः श्रीमद्भागवतम 5:5:1 में संस्तुति की गई है, तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म शौचम तनंतम। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसकी अस्तित्व पर स्थिति पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। यह श्लोक है कि स्वयं वामन देव भगवान कहते हैं, संग इस प्रकार है कि बलि महाराज के जग की भूमि में वामन देव आए और वामन देव के सौंदर्य को उनके प्रभाव को देखकर बलि महाराज बहुत प्रभावित हुए, बढ़िया से सुस्त रूप में स्वागत किया और स्वागत करने के बाद बलि महाराज भगवान से कहे कि हे विप्रदेव ब्राह्मण कुमार, आप कृपा करके मुझसे कुछ मांगिए, मुझे लोग देने की इच्छा हो रही है, दान करने की इच्छा हो रही है। भगवान ऐसे बिगनिंग में मांगने तो गए ही थे, लेकिन ऐसा मूड बना रहे थे कि नहीं, मैं यज्ञ देखने के लिए आ गया, ऐसे यज्ञ में श्रवण कीर्तन के लिए आया हूँ। लेकिन बलि महाराज आग्रह कर रहे थे तो वामन देव ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा की पूर्ति की आप देना चाहते हैं, इसलिए ऐसे मुझे भी आवश्यकता नहीं है, तो हमें मुझको 3 पग भूमि का दान कीजिए। भगवान ने कहा, वामन देव जो कहे, वामन देव यह बात कहे बलि महाराज को, तो बलि महाराज भगवान की इस याचना को अप्रिशिएट नहीं किए, बल्कि बलि महाराज को झुंझला से गए। तो कहते हैं, अहो ब्राह्मण दायाव वाचस्ति बुद्धि सम्मत तम बालो बालिस्मते स्वार्थम प्रत्येक भवेथा। बलि महाराज कहते हैं वामन देव को भगवान नहीं कहते थे, नहीं जानते थे भगवान है, हे विप्र कुमार, अहो ब्राह्मण दायाव, हे ब्राह्मण के पुत्र विप्र कुमार, जब आए थे आप बोल रहे थे, वाणी जो बोल रहे थे हमसे प्रवचन कर रखी है, हमसे बोले और आपका जो तेज शारीरिक सौंदर्य है उसे मैं अभिभूत हो चुका था और मुझे लगा था कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन जब याचना कर रहे थे 3 पग भूमि की, तो मैं समझ गया तुम बाल आप बच्चे हैं, इतना सिद्ध कोई आप उत्तीर्ण नहीं कीजिए। आप बच्चे हैं, आए बाली सुनती है, आपकी बुद्धि भी बचकानी है, चाइल्डिश मेंटालिटी है। बामन देव कह रहे हमसे क्या भूल गई, स्वार्थम प्रत्येक भोलना। आप नहीं जानते हो कि आपका वास्तविक हित स्वार्थ किस बात में है। आप ये नहीं समझते हो, वास्तविक सिचुएशन को समझने की आपकी क्षमता नहीं। आपका भी हित किसमें है, आपका स्वार्थ किसमें है, आपकी भलाई किसमें, आप उसको आपको पता नहीं। ब्राह्मण के हमसे क्या ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। भले महाराज कहते मान अपने खर्जनी से अपने कहते मान नाम वसो ही समाराध्य लोका नाम ईश्वरम पद त्रयम पदमान दीपद आशम। आपको पता नहीं कि आप किसके सामने खड़े हैं। मां मैं मेरा क्या परिचय है। आज पृथ्वी खंडों में नहीं बटी हुई है कि यह खंड है उसका राजा, वह है उसका राजा है। संपूर्ण पृथ्वी का मैं एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हूँ। केवल पृथ्वी ही है, स्वर्ग पर भी मेरा अधिकार है। लोका नाम एकम ईश्वर, मैं अकेला ईश्वर हूँ, अकेला राजा हूँ, अकेला कंट्रोलर हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ। पद त्रयम गणित है और हमसे तीन पैर हम की याचना आप कर रहे हैं। यह मेरे लिए भारी इंसल्ट है। आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, हमको तिरस्कृत कर रहे हैं। कितने बड़े आदमी के साथ जाकर तीन सिग्निफिकेंट दान की याचना करना, अरे एक आपको कोई दे सकता है। आप बुद्धिमान नहीं लगते हैं। फिर बलि महाराज ने कहा कि देखिए बामन देव जी, नाम वर्ग जो एक बार मुझसे मांग लेता है तो उसी दिन से उसको मांगने का कार्य समाप्त होना चाहिए। तो देने वाला दानी बन जाना चाहिए। वही नहीं, उसके पुत्र पुत्र के पुत्र के खानदान में कोई भी व्यक्ति को मांगने का अधिकार नहीं रहता जो मुझसे एक बार मांग लिया। हमसे मांग लिया मतलब दाता होना चाहिए। इसीलिए यदि आप भूमि की याचना कर रहे हैं, आपको जगह ही चाहिए, तो आप इतनी भूमि ले लीजिए कि आपकी जो खानदान आने वाली पीढ़ी किसी को मांगना न पड़े, देने वाले हो जाए। बलि महाराज कहे कि कुछ सस्पेंस से उनसे मांगिए, मैं एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हूँ, राजा हूँ, स्वर्ग भी मेरे अधीन है, स्वर्ग का भी मैं राजा हूँ, इस इंद्र पद पर मैं प्रतिष्ठित हूँ और मुझे देने की इच्छा है, मेरे हाथों में खुलाहट हो रही है, आपको कुछ मैं दूँ, कुछ सस्पेंस से बढ़िया खंड देना चाहता हूँ। बामन देव कहे कि बलि महाराज हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आपको शरण करने का, सिर्फ दाता की देने वाले की चैरिटी, देने वाले की कुछ नैतिकता होती है तो मांगने वाले की भी कुछ नैतिकता होती है। हमारे भी कुछ नैतिक नियमों से बंधा हुआ, हमको ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। और इस पर भगवान संतोष की महिमा का वर्णन करने लगे। इन श्लोकों में संतोष, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, सिचुएशन की बात कह रहे हैं। संतोष की महिमा का वर्णन भगवान कह रहे हैं। इनको वर्णन किया जा सकता गया है पहले इसे पूर्व श्लोकों में कहे गए कि ब्राह्मण बलि महाराज यदि आप समझते हैं कि मैं तीन पर भूमि से संतुष्ट नहीं हूंगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी पाकर, पूरा सप्त देववती नहीं, पूरा पृथ्वी पाकर भी मेरा संतोष नहीं हुआ। तो संतोष की महिमा इसमें कहते हैं बामन देव। सप्त दीप आ गई, उन्होंने कहा भगवान कहे कि हमने इतिहास सुना है, बड़े बड़े राजा हुए पृथ्वी के, एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे पृथ्वी महाराज थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, गय नाम के एक राजा हुए, बुद्ध
बड़े सम्राट थे। वो संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र अकेले सम्राट थे, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा धन, अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, पूरी नहीं हुई थी। तो असंतुष्ट व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति है, तो उसे कुछ भी दे दिए संतुष्ट नहीं होगा। संतोष की बात, डायरेक्ट संतोष के विषय में ब्राह्मण देव कहते हैं, वृक्षोपपन्नेन। हम थोड़ा इस श्लोक के तात्पर्य में चलते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर संतोष की बातें कहते हैं, तो संतोष के लिए प्रभुपाद जी प्रारंभ तात्पर्य में कहते हैं कि एक जानते हैं आप लोग, एक दार्शनिक सिद्धांत है, कुछ लोगों की मान्यता है कि हमारे मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो सुख की प्राप्ति करना है। एक दार्शनिक ग्रुप है जो हम मेंटेन करते हैं, मान्यता है उनको, आइडियोलॉजी है कि सुख प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और सुख से उनका मतलब है भौतिक सुख, भौतिक सुख की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। हिडोनिस्ट कहा जाता है, हिडोनिस्ट जो सुखवाद, और उसके प्रवर्तक उस सुखवाद थ्योरी को फ्लैशलाइज करने, फ्लैशिकल रूप देने वाले एक बहुत बड़े साधु हैं, महात्मा हैं, दार्शनिक, उनका नाम है चर्वाक। और उन्होंने सुख के बाद बढ़िया एक सिद्धांत मैनिफेस्टो दी, यावत जीवे सुखम जीवे। जब तक जीना है, जीवन है, इंद्रिय शक्ति है, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हर प्रयास करके सुख से जीना चाहिए। यावत जीवे सुखम जीवे। और वैदिक काल में ऐसा समझा जाता है कि सुख से जीने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। स्वस्थ शरीर है तभी हम सुखों को भोग कर सकते हैं। एक शरीर अस्वस्थ है तो कितना हम भोग की सामग्री है उसका हम आस्वादन नहीं कर सकते। तो सुख प्राप्त करने के लिए बढ़िया स्वस्थ शरीर चाहिए। और एक वैदिक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि स्वस्थ शरीर रहना, स्वस्थ शरीर रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घी खाना। घी बहुत उपयोगी है आयुर्वेद के अनुसार, शरीर को, भौतिक शरीर को ठीक। तो भोग तो बहुत महंगा होता है, प्राप्त नहीं होता, सबको प्राप्त नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपको घी खाना चाहिए। और घी के लिए वो पीने की बात करते हैं, सब बॉयल करते हैं, गर्म पीने को ज्यादा फायदा करता है, जमा हुआ घी अच्छा नहीं है, खाने की पीने की बात एकदम घी पीना चाहिए। और घी नहीं लेता है तो रिंगण कृपा तो घृतम पीए, रिंगण लेकर लक्ष्य है सुख प्राप्त करते हैं, तो रिंगण लेकर घी पीना है। घी ऐसे नहीं लेता है तो ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। कह सकता है कि ऋण तो बड़ा खराब है, चुकाना पड़ता है, इस चरण में तो भरना पड़ता है, अरे कौन देखा है। ऋणम कृत्वा घृतम पीए भस्म भूत शिष्य देहस्य पुनरागमन। एक बार शरीर भस्म हुआ बस खत्म हो गया जीवन। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यह चाहत उत्पन्न लाइन है कि यदि सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी में मनुष्य को संतुष्ट रहना है। यदि इस बात को खंडन, वैदिक सिद्धांत नहीं है, वेदों में खंडित किया गया है, सुख ही जीवन का, भौतिक सुख जीवन का लक्ष्य नहीं। लेकिन मान लीजिए भौतिक सुख भी यदि आपके जीवन का लक्ष्य है तो भी भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तब भी संतोष के बिना आप सुखी नहीं रह सकते हैं। संतुष्ट कंटेंटमेंट पर संतोष, संतोष नहीं है तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा भी परवाह, जाहि कछु न चाहिए सोसा हूँ पतिशाही। सबसे राजा वह है, धनवान है, सुखी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े साधु होते हैं, फकीर होते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, प्रॉपर कपड़ा भी नहीं है, लेकिन वो आनंद में मग्न रहते हैं। करवा पूर्ण मशेष मंडल पति सर्वसानों की विषय में एकदम सब छोड़कर कौपीन कंथा सिर्फ केवल कौपीन पहने थे, पेड़ के नीचे वृंदा में बैठे परम आनंद आनंद समुद्र मग्न। तो वहां श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपका सुख भी प्राप्त, भौतिक सुख भी प्राप्त करना है तो उसके लिए संतोष की आवश्यकता है, असंतुष्ट व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता है। और एक बहुत बड़ी वैदिक मान्यता है, सिद्धांत है, इसमें प्रहलाद महाराज की एक उक्ति है, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवत यथा सुखम यज्ञतः। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो इंद्रिय सुख है, जो भौतिक सुख है, रियल प्लेजर है, तो जिसको देह मिला है, हमको शरीर मिला है, तो हमारे प्रारब्ध में जो है उसको हमको अवश्य मिलेगा। पूर्व कर्म हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, हमारे ललाट में यदि सुख है तो चाहे कहीं भी जाएंगे सर्वत्र लभ्यते। यदि हमारे भाग्य में, हमारे ललाट में, हमारे कर्म में सुख लिखा होगा तो आप उसके लिए प्रयास करें अथवा न करें अपने आप आएगा। तो किसी सर्वत्र से किसी पृथ्वी पर कहीं भी जाएंगे, आपका प्रारब्ध का जो सुख और दुख आपके साथ जाएगा। यहाँ पे जो दूसरे शरीर में चले गए तब भी वो आपके साथ जाएगा। सर्वत्र लब्धे दैवात यथा दुखम प्रयत्नता, जैसे हम दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं हमको दुख प्राप्त हो जाता है, वैसे ही हम सुख के लिए यदि कोई प्रयास नहीं भी करेंगे, यदि हमारे दौड़ के द्वारा भगवान की इच्छा होगी, भगवान हमारे देना चाहते होंगे तो हमको सुख दे देंगे। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं तब प्रयासो न कर्तव्य, इसीलिए सुख प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं ही करना चाहिए। यह आयु व्यर्थ, प्रयास जो अपने आप मिलने वाला है उसके लिए प्रयास करने उसे समय वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ एनर्जी है आपका। तो उसे प्रयास नहीं करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने जो यह बात वैदिक ग्रंथों में बार बार कही गई है, जब ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए घर से निकले थे, बहुत सा उपदेश नारद जी ने दिया है, उसमें से एक उपदेश यही है कि बेटा मान अपमान से विचलित नहीं होना चाहिए। तुमको जो अपमान मिला, तिरस्कार मिला, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको राज्य नहीं मिलेगा, तो हरि कुशी के तत्काल यावन मात्रण पुरुष है, पुरुष को भगवान दय उसके द्वारा, भगवान की व्यवस्था का सुपर सुप्रीम जो विल है, प्रोविडेंस है उसके द्वारा, जो हमारे लिए चक्कर किया गया है उसे में संतुष्ट रहना चाहिए। दैवोपसादितम यावत परिच्छ ईश्वर ईश्वर गति उठा, विद्वान व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमको जो सुख और दुख जो स्थिति प्राप्त हुई है वो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर की गति समझकर मैं इसी के डिजर्व करता हूँ, ईश्वर गति उठा, ईश्वर की गति भगवान की इच्छा, कृष्ण की इच्छा समझकर उसको संतुष्ट रहना चाहिए। और यस्य दैव विहितम, जिसके भाग्य में दैव ने जो कुछ लिख दिया है, भाग्य में जो हमारे लिख दिया गया है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम संतुष्ट रहेंगे आत्मानं पोषयन्ति तमसः पारमिच्छति, वह व्यक्ति इस अज्ञान को, जो जीवन मरण का चक्र है, जन्म मृत्यु का जो रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का जो चक्र है उसे पार लग जाता है। तो उसके लिए प्रयास नहीं करने, सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वैदिक सिद्धांत है कि भौतिक स्तर पर मटेरियल किसी भी उपाय से हम लोग अपने सुख को अथवा दुख को बदल नहीं सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मा जी ने कहा है
यस्तुन्द्र गोप मथुलेन्द्र महो स्वकर्म बंधान रूप फल भाजन मातमति कर्माणि निर्धति किंत जभक्ति भाजाम गोविंद मादि पुरुषम तन्हम भजाम। भौतिक स्तर पर चाहे इंद्र हो अथवा किसी भी प्रकार की पीड़ा होता है इंद्र गोप सबको स्वकर्म कर्म के अनुसार उसको एक पात्र मिला है फल भाजन, फल को कंटेन करने के लिए रखने के लिए एक उसको बर्तन मिला है। अब उससे बड़ा उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, बर्फ जैसा कर्म किया है तो इंद्र को भी अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। इंद्र को इन सिग्निफिकेंट छोटा सा कीड़ा होता है जिसकी कर्म आयु 8 दिन की हुई और उसको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी भौतिक शक्ति हमारे इस कर्म को कर्म फल को नष्ट नहीं कर सकती, न तो इसे बढ़ा सकते न घटा सकते नष्ट कर सकते। यस्तुन्द्र गोप मथुलेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजन मातमति केवल और केवल अपने इस कर्म फल को सुख अथवा दुख नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्धति भक्ति भाजन, जो भगवान के शरण लेते हैं भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं भगवान का भजन करते हैं उनको भगवान एक फल भाजन फल को रखने के लिए पात्र देते हैं और उसका बहुत बड़ा पात्र हो सकता है और उसके द्वारा अपने भक्ति के द्वारा कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए यदि भौतिक रूप से भी कोई सुखी होना चाहता है तो उसके एसेंशियल है उसे संतोष होना चाहिए। संतुष्ट संतुष्ट संतोष संतोष है तो उसे सुख आ गया। फिर प्रभुपाद जी फिर एक दूसरे टॉपिक की बात कहते हैं यहाँ पर गीता का मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्स है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्स ऑफ भगवद्गीता छठवें अध्याय का इक्कीसवां श्लोक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, किंतु भौतिक सुख नहीं आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है परम लक्ष्य है और वह सुख सुखम आत्यंतिकम यद्यप बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वायु शीत सलभ। हमारा लक्ष्य है आध्यात्मिक सुख, इसे स्पिरिचुअल ब्लिस कहते हैं, ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस इसे कहा जाता है, तो वह प्राप्त करना मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं। और आत्यंतिकम सुख यद्यप बुद्धि ग्रहण अतीन्द्रियम और उस सुख की प्राप्ति इन इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। हमारी जो इंद्रियां हैं जो जीव का स्वरूप है, हम लोग का जो स्वरूप है कि जीवे रस स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमको अभी जो भौतिक देह मिला है तो भौतिक देह के साथ भौतिक इंद्रियां मिली हैं और ये भौतिक इंद्रियां बाह्य और से माया से ढकी हुई है। इन इंद्रियों के पीछे इन हमारे शरीर के पीछे हमारे आध्यात्मिक स्वरूप है, दिव्य ट्रांसडेंटल हमारा रूप है और उसके साथ हमारे ट्रांसडेंटल बॉडी इंद्रियां भी है। दिव्य हमारा स्वरूप है, वित्तीय जो स्वरूप है और उसके साथ उस स्वरूप के साथ में नित्य इंद्रियां हैं ट्रांसडेंटल सेंसेस भी है और उस आध्यात्मिक सुख हमारा प्राप्त करना लक्ष्य है और उस आध्यात्मिक सुख को भगवान यहाँ कहते हैं अति इंद्रियम। इंद्रिय अति इंद्रिय परम इंद्रिय ट्रांसडेंटल जो इंद्रियां है उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम। और एक व्यक्ति यदि एक जब व्यक्ति उस सुख में प्रतिष्ठित हो जाता है वह सुख प्राप्त कर लेता है तो उसके सामने संसार का सुख एकदम तुच्छ हो जाता है। इसे तो परम फल परम पुरुषार्थ जार आगे तुल्य तुल्य चारि पुरुषार्थ, यदि वह प्राप्त होता है वह सुख प्राप्त होता है आध्यात्मिक प्राप्त सुख प्राप्त होता है। यहाँ भौतिक जितने उपलब्धियां हैं जितने सुख हैं वे तीर्ण तुल्य हो जाते हैं उसके लिए, उसे इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसीलिए हमको हर प्रयास करके भगवान की भक्ति में जुड़ कर
और अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है, हमने एग्जिस्टिंग को शुद्ध करना होता है और शुद्ध करने के भक्ति योग में लगना होता है, जिसको ऋषभ देव तपस्या कहते हैं। तो हम लोग को तप में, दिव्य तप में, तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्व, दिव्य तपस्या ट्रांसजेंडर अष्टरीति में हमको इंगित होना होगा, भक्ति में लगना होगा। और वंश हम भक्ति में लगते हैं, दिव्य तपस्या में लगते हैं, शुद्धेत यस्मात् सत्व, तो हमारा सत्व, हमारा अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व है, हम लोग जिस शरीर है शुद्ध हो जाता है, हमें दिव्य ट्रांसजेंडर बॉडी की प्राप्ति होती है। और एक बार वह स्थिति प्राप्त होती है तो ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सौख्य मतलब स्पिरिचुअल ब्लिस, सुख सौख्य को स्पिरिचुअल ब्लिस प्राप्त होता है। और वह जो आनंद होता है अनंतम, वो कभी अंत नहीं होता है। यहाँ का जो भौतिक सुख है, इसका एक दिन प्रारंभ होता है और एक दिन उसका अंत भी हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख जब प्राप्त होता है व्यक्ति को, तो वह शुद्ध यस्मात् ब्रह्म सौख्य और अनंत होता है, एवर लास्टिंग अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल ब्लिस इसे कहा गया है। भगवान इसी बात को तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभाविन भारत, तव प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। जैसे स्वयं प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि ये तो आध्यात्मिक सुख, यदि कोई भौतिक रूप से भी सुखी होना चाहता है तो उसके लिए भी संतोष आवश्यक। असंतुष्ट व्यक्ति भौतिक रूप से भी सुखी नहीं हो सकता है। और जानते हैं आप लोग, संतोष के कंटेंटमेंट के ठीक विपरीत शब्द होता है, उसको क्या कहते हैं, संतोष के विपरीत शब्द क्या है, असंतोष। अच्छा, संस्कृत जानते ही सेवा, इसलिए वास्तव में संलोभ ग्रीड से कहते कंटेनमेंट, संतोष कंटेनमेंट मीन्स हमको जो स्थिति प्राप्त हुई है, जो परिवेश प्राप्त हुआ है, न तो हम उसको छेद करना चाहते हैं और न तो हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। हमारी इच्छा नहीं है कि हमको जो प्राप्त हुआ है उसमें हम डोंट होप एनी चेंज, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी इम्प्रूवमेंट, तो कंटेनमेंट है। और ठीक उसके साथ है कि लोभ, भागवत में बार बार कहा गया है कि लोभी व्यक्ति, भगवान के पर शिष्य शब्द का भक्त है, असंतोष जिसमें है, असंतोष उसे सुख सुख नहीं प्राप्त होता है। लेकिन वेरी ब्लंटली अभी बात करें कि लोभी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, आप लोग कथा में जानते हैं, अवंती के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा है, अवंती के ब्राह्मण ने कहा है अपने गीत में कि कोई बहुत कितना भी सदाचार संपन्न है, तो बस वो कहता था यशो जस सुन्ना शुद्धम, एक ऐसा उसका जस तीनों लोक में फैला हुआ है, शुद्ध जस सुजस फैला हुआ है, और उसमें इतने अच्छे अच्छे गुण हैं कि बड़े बड़े गुणान विलोभित हो जाते हैं, वो भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यदि उस व्यक्ति में लोभ हो जाता है, थोड़ा भी ट्रेस ऑफ इनसिग्निफिकेंट थोड़ा सा भी लोभ उसमें हो जाता है, तो उसके सारे यश, उसके सारे गुण वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, कोई व्यक्ति का खूब अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस है, बॉडी खूब सुंदर है, ब्यूटीफुल व्यक्ति है, वेरी अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस है, सुंदर है, यदि उसके चेहरे पर सूत्रो रूपम रक्षितम, उसके चेहरे पर थोड़ा सा एक व्हाइट लिपोसी का चिन्ह हो जाता है, तो उसका संपूर्ण शारीरिक अट्रैक्शन नष्ट हो जाता है। और सूत्र लिपोसी जैसे व्यक्ति की सौंदर्य को कितना भी सब कुछ सुंदर है, चेहरे पर थोड़ा सा लिपोसी कृष्ण का सफेद दाग हो जाता है तो सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वैसे ही सभी गुणों से वो संपन्न है। यदि उसमें लोभ आ गया तो उसके सारे गुणों को नष्ट कर देता है। भगवान वामन देव भी यह बात कहे हैं कि यदृक्षा लाभ संतुष्ट तेजो मित्रस्य वर्धते। किसी ब्राह्मण का तेज स्पिरिचुअल पोटेंसी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल ब्राइटनेस कैसे बढ़ता है? संतोष से। और यदि उस व्यक्ति में लोभ आ जाता है, नेक्स्ट वर्ष है, यदृक्षा संतोष यदृक्षा लब्ध कृष्णस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। एक ब्राह्मण का तेज संतुष्ट रहता है, उसकी स्पिरिचुअल पोटेंसी, उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहती है, तेज बढ़ता रहता है। लेकिन यदि उसमें लोभ आ जाता है, भगवान को लोभ की बात करते हैं, असंतुष्ट और लोभ आता है, तो लोभ के कारण उसकी स्पिरिचुअल पोटेंसी है, उसका ब्रह्म तेज है, वैसे ही घट जाता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित है, उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल आप करते हैं तो ठोर होता है, लव होता है, शांत होने लगता, कम होने लगता है। तो संतोष से ब्राह्मण का ब्रह्म तेज स्पिरिचुअल पोटेंसी खूब बढ़ती है, इंटेलिजेंस खूब बढ़ता है, सुंदर लगने लगता है। लेकिन कहीं लोभ उसमें आ गया तो क्या होगा? वो जो लव है धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे लव पर अग्नि प्रज्वलित हो, उसमें पानी आप छिड़कते हैं तो उसके तेज को, आग के तेज को कम कर देता है, बुझा भी देता है। भगवान यहाँ कहते हैं इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। अब वहाँ हमको हमारे अभी नैतिकता है, आप बड़े हैं, हम बहुत बड़े बड़े दान हैं, लेकिन मुझे जितनी आवश्यकता है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मुझे उतना ही मांगना चाहिए जितना से हमारी बेयर नेसेसिटी है उसी के लिए। मैंने एक बड़ा आदमी चले तो बहुत मांग लू, इसलिए मैं अपने तेज को, मैं अपने ब्रह्म तेज को नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। बड़े व्यक्ति के पास आ गया तो बात ही हमको नहीं मरना है, क्षमा कीजिए, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता हूँ, देना हो दीजिए, नहीं तो हमें मतलब ही नहीं। तो यह तो बात है लोभ के लिए। भौतिक स्तर पर लोभ नहीं होना चाहिए, परंतु आप लोग जानते होंगे राम राय रामानंद राय जी ने यह बात कही है, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए यदि सचमुच कोई प्रगति करना चाहिए चाहता है तो उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सचमुच एक भौतिक बात है, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो उसमें संतोष की बात को बहुत खराब कहा गया है। तस्य हेतु प्रति तो मलभ्यति यद भंगाम कर तल्लभ्यति दुख वदन कर्म काले न सर्वधर्मीर। नारद जी कहते हैं अपने शिष्य से व्यास जी के व्यास, तस्य हेतु प्रति प्रयत्न करना चाहिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रवयते यत्न में खूब प्रयास करना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट हो जाएंगे तो वो नहीं बोलते भक्ति नहीं प्राप्त होगी, भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए आपके हृदय में प्राप्त करने के लिए इंटेंस ग्रीड की जरूरत होती है। आध्यात्मिक प्रगति करना तो संपूर्ण ठीक है, अपना मंगलारती में आए जाते हैं सब जब चलती का नाम, वहां गोपाल जी महाराज पहले कहते थे चलती का नाम गाय है, ठीक ही हो रहा है। वो उसके लिए लोभ अति आवश्यक है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुटुंबी लब्ध है तत्र लौल्यम पति मूल्य निकलम कोटि जन्म स्मृति भूमि लब्ध है। भौतिक शिव के विषय में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपने कर्म के अनुसार हमको कहीं जाएंगे प्राप्त होगा, लेकिन भक्ति कोटि जन्म सुकृति भी न लगती, करोड़ों जन्मों की सुकृति से पूर्ण कर्म से भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भक्ति की प्राप्ति के लिए एक आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा और वह मूल्य है कृष्णा भक्ति रसभाविता मति क्रियताम। साहित्यिक ढंग से कहा गया है, राय रमानंद कहते हैं कि यदि किसी को कृष्ण भक्ति रस भाविता मति चाहिए तो उसे खरीद लेना चाहिए, तो यदि कहीं बाजार में कहीं उपलब्ध है तो बेचने वाला कोई मूल्य मांगता है, संकोच मत कीजिए, ले लीजिए, बार्गेनिंग भी मत कीजिए, जो मूल्य कहता है उसे देकर खरीदिए। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता खरीद लेना चाहिए, यदि कहीं प्राप्त हो रही है तो संतवाई राय रमानंद कहते हैं, लेकिन उसको खरीदना चाहते हैं कृष्ण रस भाविता मति शुद्ध कृष्ण प्रेम खाद खरीदना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, वो मूल्य क्या है, लौल्यम, इंटेंस ग्रीड टू गेट अतिशय लोभ कि हमको मिलना ही चाहिए, सब आग्रह छोड़कर एकांतिक रूप से नहीं हमको मिलना ही चाहिए, उसके लिए हम मचल जाते हैं, तब वह मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान जो यह कह रहे हैं, रामदेव कह रहे हैं कि भौतिक स्तर पर यदि आप सुखी होना चाहते हैं, भौतिक रूप से ही सुखी होना चाहते हैं, तो आपको संतोष होना चाहिए, दीक्षा जो कुछ भगवान ने दे दिया है, बाय विल ऑफ प्रोविडेंस, हमारी इच्छा नहीं है कि हम कुछ चेंज करें, अच्छा इम्प्रूव करें, उसी में संतुष्ट होना चाहिए भौतिक भोगों में, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो लोग उसमें वन ऑफ द मोस्ट आर द डीप मोस्ट एसेट आपके साथ है, वह प्राप्त होगा तो आपको कृष्ण रस भाविता मति प्राप्त हो जाएगी, और एक बार वह प्राप्त हो जाए तो सी तो परम फल परम पुरुषार्थ यार आगे तिल्य तुल्य चारी पुरुषार्थ। प्रभुपाद जी दिल्ली में कहते हैं कि यदि भौतिक सुख भी लक्ष्य है तो भी, लेकिन वास्तव में भौतिक वह परम लक्ष्य नहीं है, परम पुरुषार्थ है, परम लक्ष्य ये तो परम फल, परम फल है, सुप्रीम डिजायरेबल ऑब्जेक्ट है कृष्ण प्रेम, और उसके लिए एक परम फल परम पुरुषार्थ यार आगे फिर नतुल्य चारी पुरुषार्थ, यदि वह प्राप्त हो जाता है तो यह यहाँ का भौतिक सुख है इनसिग्निफिकेंट, उस व्यक्ति के लिए पेड़ के समान घास के समान वह इनसिग्निफिकेंट कुछ हो जाता है, तो हमें उसे प्राप्त करने का प्राप्त करना चाहिए। हाँ, ये भरे हम बामन दे संतोष कंटेंटमेंट की प्रशंसा करते हैं, हरे कृष्ण ठीक है कल कम से कम इस श्लोक में बामन दे यही बात कह रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, थैंक यू महाराज, अच्छा क्लास आपने दिया, ठीक मुझे यावर आपके कारों के लिए बच्चा का अहो ब्राह्मण दयावस्ते सब प्रसन्नता तुम बालो बालिश मती, मैंने ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा जो बुद्धि है बच्चे के समान है, बलिमाल करते हैं किंतु बच्चों को मालूम नहीं कि उसमें कितनी भलाई है कितनी भलाई नहीं है, स्वार्थम प्रति अवधो यथा, बच्चों को गुरु हमें खेलने में अच्छा लगता है उसको मालूम है कि अच्छा है इसके लिए नहीं अच्छा है, कहेंगे बच्चों का परिचय दिए हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, स्वार्थम प्रति अवधो यथा, अपने स्वार्थ के विषय में किसमें भलाई है उसको नहीं जानते हैं बालक पढ़ा है,
करते माइंड
अभी जल्दी के समय है
आज आपने जैसे बताया कि जो प्रारब्ध में है वो किसी भी मतलब तरह से मिलेगा, जैसे अगर प्रारब्ध में नहीं है तो कितना भी प्रयास करो नहीं मिलेगा, तो ये समझ में आता है, मतलब देखा भी है कई बार। लेकिन जैसे अगर प्रारब्ध में है तो अगर मिनिमम तक नहीं डालेंगे तो वो मतलब कैसे प्राप्त होगा, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना उसके लिए। जैसे अगर किसी का
मेंटली संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसे फिजिकल जो प्रयास है वो भगवान भगवद्गीता में कहे हैं कि यतम तुम कर्म तम कर्म ज्यायो हकर्म शरीर यात्रा अपनी नचती प्रसिद्धि का कर्म रहा, काम नहीं करोगे तो शरीर यात्रा निर्वाह नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो कर्म का स्वरूप त्याग की बात भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन संतुष्ट रहना चाहिए। और प्रहलाद महाराज कहते हैं फिर और भी वो उपदेश देते समय दत्तात्रेय भगवान भी यही बात कहते हैं कि जो हमारे भाग में ललाट में जो पूर्व कर्म है वो मिलेगा ही। सुखम ऐन्द्रियतम दैत्या देह योगी निधिना सर्वत्र लभ्यते दैव यथा दुखम अयत्नतः, बिना प्रयास किए जैसे हमको दुख मिलता है वैसे ही है मेरे मित्रों। प्रहलाद महाराज कहते हैं क्योंकि इंद्रिय सुख मतलब भौतिक सुख कहीं भी जाएंगे मन के समय मत समझे कि बॉम्बे भी ज्यादा मन है, ये आपके ललाट में नहीं है, तो चाहे बॉम्बे रहे चाहे चांदनी चौक में रहे चाहे कोलाबा बाजार चाहे लोन पैसा चाहे सुख यहाँ है, यहाँ है तो मिलेगा नहीं है तो अब शकर लगा ये कहना। लेकिन फिर भी भगवान भगवद्गीता में लोग कहते हैं यतम पूर्व कर्म तम कर्म ज्यायो कर्म नहीं शरीर यात्रा पिछति प्रसिद्धित कर्म, स्वरूपतः कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए भौतिक निर्वाह के लिए, लेकिन मन से एकदम संतुष्ट रहना चाहिए। अजगर करे न चार करी पक्षी करे न काम दास मल्लू का कह रहे सबके दाता है, क्या अजगर चक्री क्या कर चक्री करते हैं ना अजगर मोटा सांप होते हैं वो क्या करते हैं कहीं ऑफिस नहीं जाते हैं, अजगर करे न चाकरी पक्षी लोग कौन सा है उड़ते रहते घूमते हैं, लेकिन शाम होते होते पेट भर ही जाता है। दास मल्लू का कह रहे सबके दाता वैदिक ग्रंथ में बार बार बात कम से कम श्रीमद भागवत में नारद जी कहते तस्व हेतु प्रकृत को विदु न लभ्यते यद भूता में तल्लभ्यते, लेकिन तब भौतिक सुख प्राप्त हो गया तल्लभ्यते दुख जैसे दुख प्राप्त होता है वैसे भौतिक सुख भी प्राप्त करे। और प्रहलाद महाराज कहते हैं इंद्रेरी तब प्रयासो न कर्तव्य, उसके लिए प्रयास नहीं ही करना चाहिए, यतः आयु व्यय केवल उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी है, अपने आप को प्राप्त उसे लिए प्राप्त करना है, नहीं प्राप्त होने वाला है तो नहीं होगा, इसे तब प्रयासो न कर्तव्य इसीलिए उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान भगवद्गीता में थोड़ा सा सख्त देते हैं यतम कुल कर्मं तम कर्म ज्यायो हकर्म शरीर यात्रा पिचनती प्रसिद्धित कर्म, काम नहीं करोगे और उसे भगवान कहते हैं कि तो शरीर का निर्वाह भी सम्यक रूप से नहीं हो, तो स्वरूपतः कर्मों के त्याग की अपेक्षा कर्म फल का त्याग करके कर्म करना अच्छा भगवान कहते हैं। नियतम कुरु कर्मं तम तुम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करो, क्योंकि कर्म ज्यायो हकर्म कर्म सब्सक्राइब जो भी जो करना नहीं करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। और यदि नहीं करोगे प्रिस्क्राइब ड्यूटी का पालन नहीं करो तो शरीर यात्रा भवन शब्द शरीर यात्रा पुरुषते न प्रसिद्धि। संगत रूप से शरीर का मेंटेनेंस भी नहीं होगा। शरीर यात्रा की नचते प्रसिद्धि का कर्म नहीं काम करने से शरीर का सम्यक निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए स्वरूपतः कर्म फल कर्म त्याग की अपेक्षा श्रेष्ठ है कर्म के फल का त्याग करके और अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी में हमेशा लगे रहना।
ब्रह्मदेव का उपदेश के लोग नहीं होना चाहिए लोग पर जैसे आप कहें, लेकिन प्रवचन तो ब्रह्मदेव किए कि लोग ने, लेकिन लेने के लिए तो ठीक विपरीत सब कुछ ले लिया और उनको और कहे कि तुम अपना मांग मेरी मांग को पूरा करो। एक तो प्रवचन मौसम हो गया जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और
शुरू में भगवान लेने के लिए आए थे, सब कुछ लेने के लिए आए थे, पर पहले से भीतर नहीं था संकल्प ले रखी थी सब कुछ ले लेना था, यही इंटेंशन था। लेकिन दान जो लेता है उसको कैसे ठीक करना चाहिए दर्जन को हम बता रहे थे। पहले इतनी भारी प्रशंसा किए हैं देने जो दाता के पास, अब खूब प्रशंसा करना चाहिए। एक बेगर की क्या फिलॉसफी होना चाहिए, क्या मेंटालिटी होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, भगवान हम बताए हैं। कह रहे हैं कि नहीं लेना, एकदम सब कुछ ले लिया, इतनी भारी बेइज्जती सहकर बदनामी सहकर। देखिए बामन लोग कहते हैं ना कि बामन कहते हैं, बामन छोटा कहते हैं, अभी कितने भारी बदनामी भगवान की होती है, त्रिविक्रम है लेकिन बामन कहते हैं छोटा है, बामन कहते छोटा है। तो डालें बेइज्जती सह पर भी दान लेने का, जिसे दान लेना है किसी से उसकी क्या कितना टैक्ट खुली बातें करना चाहिए, एक्सपोज नहीं होना चाहिए कि अरे ग्रीडी है मांगेंगे तो कहेगा ये तो मांग रहा है, ऐसा बात बनाइए कि वो अपने ही से सब कुछ दे दे। तो लेकिन फिर भी भगवान जो कहते हैं भौतिक स्तर पर एक संतोष की बात, तो संतुष्ट होना चाहिए। तो भगवान की लीला है और केवल मांगने वाले का उनको ही भगवान को पीछे दिन दान मांगने आएंगे, उनको कुछ पाठ चाहिए ना कैसे कैसे बोलना चाहिए क्या करना चाहिए, लीला करते सब कुछ ऐसे लोग हैं ब्राह्मण लोग जाएंगे दान मांगेंगे तो कैसे उनको मांगना चाहिए। तो भगवान की इंटेंशन था पहले से प्री प्लान था कि सब कुछ ले लेना, लेकिन शुरू में भगवान को ना ना ऐसे मैं देखने के लिए आया था, जो मैं मांगने क्यों आया था। दूसरा बात है कि इसमें हाइपोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, समझ में गड़बड़ी है। बावन बाबा जब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पहला नंबर अपने लिए मांगने आए नहीं थे, देवा नाम पाए साधक वो देवताओं के लिए मांग रहे थे, अपने लिए नहीं मांग रहे थे। ये जो बात कह रहे हैं भगवान यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के लिए, हम लोग ये कह रहे हैं जो हम लोग जो मिला संतोष करना चाहिए भगवान के लिए नहीं। गोपाल जी कहते हैं ले आएगा पकड़ लेट गया पूरा पकड़ लूंगा, भगवान के लिए संतोष नहीं करना है, और जो रुपया लाए तभी कमे हो रहे हैं भगवान के लिए, अपने लिए। यहाँ पर भगवान बामन लोग अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं किसके लिए, देवा नाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य को सफल कर, देवा नाम कार्य साधक देवताओं का काम करना, और देवताओं का काम खगराज को लेना ही है स्वर को अपने हाथ में।
कि मैं बहुत संतोषी हूँ, इनको नहीं चाहिए, और वो भी सैंपल दिखाए मेजरमेंट कुछ, और बाद में बहुत बड़ा मेजरमेंट जैसे तुम लेना हो बटखरा दिखाए छोटा, लेना हो तो बड़ा बटखरा से तौलने लगे, तो पहले ही अगर कह देते कि मुझे संपूर्ण अपना साम्राज्य दे दो तो बड़ी महत्व देने के लिए तैयार ही है, तो इतना ठीक क्यों भगवान किए, ठीक किसका जरूरत है। देखो आगे बात आई हुई है,
बलि महाराज को प्रतिज्ञा करा लेना था, नहीं तो प्रतिज्ञा नहीं करते, हवा नहीं देते तो दुष्ट था ना, शुक्राचार्य मना कर दिए ना। तो भगवान को तो प्रतिज्ञा को ला देना था, एकदम ला दे तब भगवान प्रतिज्ञा को उनको ला देना था कि हाँ मैं दूंगा, वचन दे दिए, संकल्प बोले जा रहे थे। तो इसीलिए मानने वाले को नहीं तो बाधा हो सकती थी ना, आप देखे कितनी भारी समस्या थी, गुरु जी ने कह दिया। और एक शिष्य के लिए साक्षात हरि तीन समस्त शास्त्र कह रहे कि नहीं देना है, तो भगवान यदि ऐसे ठीक करके प्रतिज्ञा नहीं लिए होते थे तो भगवान हर चांस नहीं लेना चाहते हैं कि ऐसा कोई लिमिट रहे कोई कारण पड़ जाए व्यक्ति दोनों भाग जाए, प्रत्येक तरह से उसको बांधना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बुक रिकॉर्ड लाइन छोड़ा था शुक्राचार्य निकलने का, तो एकदम चारों जगह घेर लेना, कितना भारी गिरावट आ गया शुक्राचार्य कह दे साक्षात कभी नहीं देना है। और आप लोग जानते हो शिष्य थे साक्षात हरि तीन समस्त शास्त्र गुरु की आज्ञा यशो प्रसाद भगवत प्रसाद। और इतना ही नहीं, आप लोग जानते हैं बलि महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, इस शरीर को भी बलि महाराज ने ही शुक्राचार्य ने ही दिया था, संजीवनी विद्या इनकी मृत्यु हो गई थी बलि महाराज के बाद, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जान गए थे, उस विद्या के द्वारा पुनर्जीवित भी थे, तो कितना भारी उपकार हुआ। तो शरीर भी शुक्राचार्य दिए थे और आध्यात्मिक ज्ञान को दिए हैं सिखा, और वो कह रहे हैं कि नहीं देना है। यदि ब्राह्मण देव ठीक करके जैसे करके प्रतिज्ञा नहीं लिए होते तो भारी रिस्क था, चांस था कि वह बलि महाराज निकल सकते थे। ये तो सर्वे तो कुछ नहीं, ये तो करना नहीं पड़ता। एक बात ये भी है कि भगवान चाहते हुए बलि को डिफीट नहीं कर सकते थे, भगवान स्वयं कहे थे कि आज बलि पर ब्राह्मण का कृपा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यदि कोई मेरे पास से श्रापित किया जाए ब्राह्मण को असंतुष्ट कर दे तभी यह संभव है। तो भगवान बलि महाराज को वहां तक लेकर के आए जहां तक वो वचन दे दे, और शुक्राचार्य को गुड बाय बोल रहे हैं, तब शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि जब अपने को बहुत चलान समझता है, तुम्हें मालूम नहीं क्या होने वाला है, तुम तो नरक में जाएगा, दो पैर में सब नाप लेगा, तीसरा पैर कहाँ रखोगे, कहाँ दोगे। तो भगवान ने वही कहा जो गुरु जी ने कहा था, जैसे आप प्रसाद भगवत प्रसाद, दो पैर में सब नाप लिए तीसरा कहाँ रखोगे, तुम तो बलि में तो भगवान के भक्त थे, सर्वांग थे, तो भगवान ने बुद्धि दिया कि पास चिरे दे दो। वेरी गुड पॉइंट। बाद में पूछ लेते हैं, समय प्रसाद का
हरे कृष्ण महाराज। अच्छा, एक साधक और एक अभक्त जो भक्ति के लिए नहीं करता तो कर्मा के कैसे चलते हैं उसके अनुसार, एक साधक भक्त है और एक भक्ति नहीं करता, इसको प्रारब्ध कैसे चलता है। जैसे एक भक्त को बहुत बड़ा धन मिलने वाला था, उसको प्रारब्ध मिले तो भक्ति करता है तो क्या नष्ट हो जाता है ऐसा।
यदि क्या प्राप्त होता है ना, कैसे आप क्लियर कीजिए प्रश्न को।
जैसे जो भक्ति प्रयास नहीं कर रहा भक्ति के लिए,
भक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा
है, भक्त जो है
भक्त
है,
भक्त भक्त नहीं है,
भक्त नहीं है, और एक साधक जो
भक्त है
साधक है, वो उसका जो प्रारब्ध में एक बड़ा आदमी बनना चाहिए, तो भक्ति करने से क्या उसका पुण्य नष्ट हो जाता है।
जैसे जब भगवान के धाम में प्रवेश करने की बात होती है तो उसमें पाप और पुण्य दोनों बाधक होते हैं, तो उसके कर्म जो अच्छे शुभ कर्म खींचना चाहते हैं स्वर्ग के तरफ भोजन के तरफ, तो उसको भी नष्ट हो जाता है। कर्माणि निर्धत्व, तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही भौतिक नष्ट हो जाते हैं। अच्छा,
जप करने से कुछ ऐसे शुभ कर्म भी बाधक होते हैं भक्ति में, तो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करें, भक्त करेगा तो कुछ ऐसे अच्छे, जैसे मान ले बंधन है, एक व्यक्ति लोहे के जंजीर में बंधा हुआ है, एक सोने के जंजीर में बंधा हुआ है, तो और मुक्त होना चाहता है, तो लोहा वाला मान लीजिए अभक्त का जो पाप का बंधा है और एक सोने के जंजीर में बंधा है, तो वो भी पुण्य का अर्थ है। तो जाने के लिए तो दोनों पटना चाहिए ना, पाप और पुण्य। भगवान की प्राप्ति में होने के लिए पुण्य कुछ सहायक होते हैं बिगनिंग में, लेकिन जरूरत नहीं होती है। इसे जब हाईएस्ट स्टेज प्राप्त होता है तो वहां पर शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप चिंता नहीं करना चाहिए, हाँ हम लोगों के पास उतना शुभ कर्म नहीं है कि पुण्य नष्ट होने वाला है, भगवान का कम जब करेंगे नहीं तो पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, ये चिंता करने की बात नहीं है, वो बहुत कम है और ज्यादा दूसरा ही है। ठीक है, तो
कृष्ण भाव में भावी होने के लिए मतलब लोभ की जरूरत है, लेकिन लोभ कैसे प्राप्त होगा?
रामानंद राय जी चैतन्य महाप्रभु से बातचीत करते कहते हैं एकदम हाई सूक्ष्म कृष्ण भाव मति की प्राप्ति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियता, कृष्ण रस भाविता मति को खरीद लेना चाहिए, यदि कुतो की लभते, यदि कहीं यह बिक रहा है तो प्राप्त होता है। तो रामानंद जी कहते हैं कि बार्गेनिंग भी वो ज्यादा दाम मांगता है तभी ले लेना चाहिए, और उसको वो कहते हैं रामानंद राय उसके लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, वह मूल्य आपके पास होगा, आपके पॉकेट में होगा तो खरीद सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं। आपको वह क्या मूल्य है? लौल्यम, संस्कृत शब्द उन्होंने लौल्यम वहां पर अनुवाद में किया, इंटेंस ग्रीड, लोभ से काम चल सकता था ग्रीड, लेकिन अब इंटेंस ग्रीड तो वह ग्रीड प्राप्त कर लोभ प्राप्त होता है, और वह लोभ के लिए वहीं पर आजू बाजू में बात कही गई है। जब हम कैसे जो कृष्ण भावना भाव के व्यक्ति हो जाता है उसके एसोसिएशन हम लोग जाते हैं और उसके सुख को आध्यात्मिक बीज को हम लोग देखते हैं, तो हमारे भी वैसा सुख प्राप्त करने की लोभ उत्पन्न होता है। जैसे किसी बड़े घर में बड़े व्यक्ति के घर में आप लोग जाते हैं, वहां पर देखते हैं खूब बढ़िया कार है, तो कभी कभी इच्छा होती है कि हमारे पास भी कार हो, लोभ होता है। तो वैसे ही जो कृष्ण भावना भारत व्यक्ति हो गया है उसके एसोसिएशन में जाने पर लगता है कि वो कितना आनंद में है, भक्ति के सुख में तो बड़ा आनंद से है, तो उसको हमको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो वह इच्छा लोभ प्राप्त होता है भगवान के भक्तों के एसोसिएशन से। भक्त का तुलयाम लवे नाति ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मृत्यानाम प्रकाशिश, अथवा चैतन्य चरितमृत खूब बढ़िया से इस बात को कही गई कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तो साधु के एसोसिएशन से हमको भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है, और वह हो जाता है तब तो हम लोग साधु के एसोसिएशन में श्रवण कीर्तन करते हैं और प्राप्त होता है। लोभ को प्राप्त करने के लिए भक्त का एसोसिएशन। तो आजकल तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, आजकल इतने कथाकार लोग हैं, अब उनका सुनने के बाद नाटक करना शुरू करते हैं, नाचना गाना भगवाना सब कुछ करते हैं, तो लोग समझ रहे हैं यही तो बहुत अच्छा चीज है, हरण गायन सुन करना चाहिए, फिर क्या होगा? एक नीति के श्लोक में कहा गया है, कछु चंदनम बने बने साधव नहीं सर्वत्र कछे कसूर मेरा एक मतलब मान है कि देश से अपीरन साधु का है तो उसे के उसके बाद भी लगाइए यह बात बड़े मैंने ब्लंटली कहिए कहते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं अवैशवात मुखोदगीर्णम पूर्तम हरि कथा नृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पो शिष्ट यथा फल अवैशवात मुखोदगीर्णम जो वैष्णव नहीं है जो भगवान का भक्त नहीं है जो भक्ति के साधन में नहीं लगता है अवैष्णव उसके मुंह से उद्गीर्णम निकले हुई अवैशवात मुखोद उद्गीर्णम पूर्तम हरि कथा यदि वो हरि कथा है पूत्र है पवित्र है कि किसी प्रकार का दोष नहीं लेकिन जब वो किसी अभक्त के मुंह से निकलता है तो उसको सनातन गोस्वामी कहते हैं श्रवणम नैव कर्तव्य उसे नहीं सुनना चाहिए। अरे भाई क्या हरि कथा बोल रहा है पवित्र हरि कथा बोल रहा है व्यशासन से बड़ा क्यों नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वह वैष्णव नहीं है वह भगवान का भक्त नहीं है भक्ति नहीं करता है के कैसे सर्वम शिष्ट यथाफल इस समय सर्वम आयुर्वेद का सिद्धांत है क्योंकि गाय का दूध स्पेशली जब वो धारोषण दूध है आप पिएंगे तो आप एकदम सब कुछ ठीक कर देगा स्वस्थ कर देगा लेकिन उस दूध को खूब बढ़िया से कटोरी में चांदी की कटोरी में रखे हुए खूब बढ़िया दूध है आप थोड़ा इधर गए हैं और एक सांप आकर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पी लिया है उस दूध को आप क्या करेंगे क्योंकि आयुर्वेद का दूध चर्क कोट करेंगे सुसुम को कोट करेंगे दूध कितना उपयोगी है हम कहूंगा जी कहते हैं साफ कहते हैं कि ब्रेन टिश्यू के लिए दूध कितना बढ़िया है मैं कहूंगा जी इंपरेटिव है आदेश है श्रवणम नैव कर्तव्य श्रवण नहीं करना चाहिए अब नहीं कहिए श्रवण नहीं भी करना चाहिए सबको शिष्य यथार्थ जैसे सांप ने दूध को पी लिया है थोड़ा सा अच्छा तोड़ टच भी कर दिया है तो वह दूध हम चांस मत लीजिए रिस्क मत लीजिए श्रवण नहीं कर्तव्य अधिकांश कथाकार मैंने एकदम एक शब्द का प्रयोग किया हम उसको आज पहले नहीं जानते प्रोफेशनल रिसाइटर्स प्रोफेशनल रिसाइटर मतलब जैसे कोई नौकरी करता है कोई व्यापार करता है कोई मेडिकल प्रैक्टिस करता है जो कहे आपकी आई अर्न करने के लिए तो एक जीविका के रूप में प्रोफेशन के रूप में यदि उसने कथा को अपनाया है उसे अर्न करना है उसको विभव की आवश्यकता है आप फैक्ट्री चलाते हैं चाकरी करते हैं मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं इंजीनियरिंग से करते हो आखिर बनाकर आप अर्न करते हैं मैं भागवतम कॉलेज बढ़िया एकदम सुदूरगंज से बहुत बड़ा झंझट भी नहीं है कुछ पुस्तकें लिए कुछ सुन ले और बोल लेंगे तो इसे प्रोफेशनल रिसाइटर के द्वारा यदि कोई भी कथा कही जाती है तो बड़ा ब्लंटली शब्द कहते हैं मतलब एकदम कुछ क्या कहते हैं खराब शब्द उर्दू शब्द में श्रवण कर्तव्य और वैश्वात पंचमी विभक्ति में है अवैश्वात मुखात उद्गीर्ण अवैष्णव के मुंह से निकली हुई कथा पवित्र कथा हरि कथा है तो भी श्रवणम नैव कर्तव्य श्रवण नहीं भी करना चाहिए सर्व को उच्छिष्ट सर्व का जो रेमिनेंट है कंटेमिनेटेड कर दिया है फॉय दूध जैसे सर्प के द्वारा पिया हुआ दूध जो बचा हुआ उसे नहीं पिया जाता है नहीं पीना चाहिए वैसे ही रूपा जी शब्द प्रोफेशनल रिसाइटर्स के मुंह से सुना हुआ उन्होंने सुनना चाहिए नहीं तो रिस्क है आप या मत समझिए कि जो सांप ने दूध पी लिया है तो हम पिएंगे तो से मन फायदा न करेगा लेकिन कुछ होगा नहीं, कुछ हो भी सकता है तो सारी भक्ति नष्ट भी हो सकती है। जीव और कल्याण लागी सूत्र को लग गया मायावादी भाष्य शून्य है सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु जीव और कल्याण लागी सूत्र को लग गया वेद्यानी वेद वैदिक ग्रंथों का एसेंस है ब्रह्म सूत्र। जीवों के कल्याण के लिए वेद्यास ने कहा है चारी वेद दधी भागवत नवनी मथु ले न सुख खाई ले न परीक्षित। भागवतम के चारी वेद दधी भागवत नवनी मथु ले न सुख खाई ले न परीक्षित वो एकदम एसेंस है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुने भय सर्वनाश। सर्वनाश बड़ा कठिन शब्द है, वैसे ही श्रवण की बात कही गई है। यमर सिंह जी को हम जानते हैं अलग अलग कर देंगे, गलत बोलते हैं तो उसको अलग कर देंगे, उसमें से क्या है केवल छांट लेंगे अच्छा अच्छा चीजें। हंस होता है ना तो पानी को अलग कर देता है और दूध को पी लेता है मिश्रण को। तो एक अठाकार कितना भी मायावादी कुछ बोलेगा बोलेगा उसमें से हम जो इसेंस को निकाल लेंगे। चेतन महाप्रभु जे और कल्याण लागी सूत्र को व्यास मायावादी भाष्य शून्य है सर्वनाश। उसी संदर्भ में अभी कहा गया चारी वेद दधी चारों वेद है और दधी है और भागवतम क्या है नवनीत मथु ले न सुख खाई ले न परीक्षित। तो उस विषय में थोड़ा सावधानी रहने की आवश्यकता, उतना उत्साह इतना ही होना चाहिए।
बाहर जगत लोगों को बोलते हैं हमको भक्ति मिल गया, लेकिन हम भक्त लोग बोलते हैं हमको भक्ति नहीं मिल रहा है। प्रयास करें, बार बार प्रयास करें, एक साल नहीं, दो साल नहीं, पांच साल नहीं, 25 साल 30 साल रहे कि भक्ति नहीं मिले, तो डायरेक्ट क्यों भक्ति नहीं मिल रहा
है? अरे वो अभी मेरा भी यही प्रश्न अगर मैं नीचे बैठा होता तो यही प्रश्न पूछता है। आप पूछ रहे ठीक है, प्रश्न है और बहुत दिन तक पूछा भी जाता रहेगा। ठीक है, आप जय श्री प्रभुपाद की।